ओम शांति। अभी के सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी इंदिरा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप महाराष्ट्र गोंदिया से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से MSc इन मैथमेटिक्स की डिग्री प्राप्त की है और साथ साथ अपने संस्था द्वारा जो वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपने MSc मास्टर्स डिग्री अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। 1987 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1998 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया। आरंभ के 5 वर्ष आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाले स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। 2001 में आपने ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित मनोबल एवं मनसा सेवा नामक पुस्तक लिखने के आप निमित्त बने, जिसका विमोचन अव्यक्त बाप दादा से करवाया गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक नागपुर एवं मुंबई गामदेवी सेवा केंद्रों पर रहकर ईश्वरीय सेवाओं का अनुभव किया। 2009 से यानी 14 वर्षों से आप स्थायी रूप से पांडव भवन स्थित ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले विजिटर्स डबल फॉरेनर्स बी के भाई बहनों की सेवाओं में आप सदा उपस्थित रहते हैं। उनके लिए आयोजित होने वाले प्रोग्राम्स का आप कुशल कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। आप एक कुशल राजयोगा शिक्षिका है। शांतिवन हेडक्वार्टर्स के परिसर में चलने वाले शिविरों में भी आप सेशंस लेते हैं। आप ज्ञान को बहुत ही सरल कर उनकी गहराई तक ले जाते हो, ताकि ब्राह्मण परिवार उसे सहज समझकर अपने जीवन में धारण कर सके। तो आज दीदी जी का टॉपिक है पश्चाताप और वैराग्य का एक अद्भुत मिसाल अजामिल। तो चलिए सुनते हैं आदरणीय इंदिरा दीदी जी।
ओम शांति। आज का विषय पश्चाताप और वैराग्य का एक अद्भुत मिसाल अजामिल। और आज के इस विषय की प्रेरणा आज की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने इसको याद किया है अजामिल को। गीत क्या था मुरली का आज? नन्हे बच्चे हैं। और फिर उसी गीत को लेकर बाबा ने आगे मुरली में कहा, गीत में सुना ना। हाँ, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। इतना ही नहीं, सिर्फ आज की मुरली नहीं, लेकिन जिस दिन से आपकी भट्टी शुरू हुई है 19 तारीख से, उस दिन का भी जो वरदान था उसमें ये पश्चाताप और वैराग्य की बात आई थी कि कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माचीत भव, जिसमें ये स्पष्ट आया था कि धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है। क्लियर शब्दों में बाबा के महावाक्य है ये तो जैसे कहा कि हमारे पास जो मुरलियां हैं, साकार मुरलियां जो रोज चलती है, उसमें जो वरदान होता है वो अव्यक्त मुरलियों से लिया जाता है। तो वो उस दिन का जो वरदान था, अगर ओरिजिनल मुरली जाकर देखेंगे तो ये है 11/4/1983 की मुरली। आप जाके खोल के देख लेना, प्रश्न उत्तर के रूप में दिया है कि धर्मराजपुरी क्या है और उसका ही थोड़ा हिस्सा उस वरदान में आया था कि धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है, लेकिन जो पापों की हम सजाएं भुगतते हैं वही धर्मराजपुरी होती है। वही जब हम सजा भुगत रहे होते हैं उस समय वो घड़ी होती है पश्चाताप की, वो घड़ी होती है वैराग्य की। हमारे ही द्वारा जो हम पाप हुए हैं वही हमारे सामने आके प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप में सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसके पाप होते हैं, दूसरों को नहीं। और वही ऐसे महसूस होते हैं जैसे कोई यमदूत आए हैं। बाबा ने मुरली में कहा है ये सब, यहां तक कि वो ओरिजिनल मुरली में उसका और ज्यादा विस्तार है कि उसमें कहा है कि यहां तक कि ब्रह्मा बाबा भी ऑफिशियल रूप में आ जाते हैं उस समय, और उसी को जो उस समय हमें दृश्य दिखता है हमारे सजाओ का, उसी के लिए कहा गया है कि गोरे गोरे आए काले काले आए, है ना। अक्सर करके हमने सुना है व्यक्ति जब मृत्युशैया के निकट होता है और जिसके जैसे कर्म उस अनुसार अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अनुभूति होती है और वो अलग अलग वो लोग शेयर करते हैं। तो कई लोगों को हमने देखा है सुना है कि मृत्युशैया पर जब था तो बार बार कह रहा था मुझे बचाओ, कोई मुझे पकड़ने आया है, कोई मुझे मार रहा है। है आप लोगों को ऐसा अनुभव सुना है कभी ऐसे? हाँ सुना है ना। हाँ, और कई बार हमने ये भी देखा है कि क्योंकि पश्चाताप और वैराग्य वो दोनों उस समय फील होता है, माना पश्चाताप होता है कि हाय मैंने ऐसे कर्म किए हैं और मिला क्या अभी मुझे उसका रिजल्ट, और उस समय फिर वैराग्य जागता है और उस वैराग्य के परिणाम स्वरूप जहां जहां क्षमा मांगने की जरूरत होती है वहां क्षमा भी मांगते हैं। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यह भी देखा है कि कुछ लोग मरते वक्त जिन्होंने सारी जिंदगी किसी को खूब ऐसी कर्मकांड किए कि उनका जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन मृत्यु के समय चूंकि वो सीन सामने आती है और देह छूट नहीं रही होती और सजा बहुत अनुभव हो रही होती है, उस समय वो रियलाइजेशन होता है कि फलाने को बुलाओ और बुला के उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैंने जीवन भर तुम्हें बहुत दुख दिया है लेकिन अब मुझे माफ कर दो। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है सुना है। तो अजामिल की भी लाइफ कुछ इसी प्रकार की है कि जहां उससे भी पश्चाताप हुआ है, वैराग्य हुआ है। तो क्या है कहानी आप लोगों ने सुनी, कल भी आप 19 तारीख का वरदान की बात हम कर रहे थे और यहां तक कि 20 तारीख को भी बाबा ने फिर से धर्मराज को याद किया था कि पाप पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास होता है। और बाबा क्या करते हैं, बाबा ने उस दिन सबको याद कर लिया था, गणी काए वैश्याए कुब्जाए, याद है मुरली। तो ये शास्त्रों में इनकी कहानियां हैं और बाबा उनको याद करते हैं, तो हमें अवश्य पता होना चाहिए कि उसका क्या ज्ञान मार्ग से कनेक्शन है। और वैसे भी ये बातें सूक्ष्म होती है क्योंकि देखो जैसे कहा यमदूत है, काले काले आए गोरे गोरे आए, वो तो सिर्फ उस व्यक्ति को दिखते दूसरे को नहीं दिखते, और इसका मतलब वो जो कुछ हो रहा है सूक्ष्म में घटित हो रहा है, स्थूल में नहीं घटित हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म में घटित हो रहा है। तो उन सूक्ष्म बातों को हम समझे कैसे, इसलिए शास्त्रों में उसको क्या किया है, कहानी बद्ध कर दिया है कि कहानी के रूप में होगा तो याद आएगा और फिर कहानी का एक एक चरण हम देखते जाएंगे और वो सूक्ष्म बात हमें समझ में आती जाएगी। तो कहानी क्या कहती है कि अजामिल कौन था? कहानी में पूरा वर्णन देते हैं ना, तो कौन था अजामिल? पापी अजामिल की कहानी जरूर कहते हैं, लेकिन क्या वो शुरुआत से पापी था? कौन से कुल का था वो? ब्राह्मण कुल का था वो। इसीलिए कहा ये कहानियों का कुछ तो भी संगम से रेफरेंस है। हम सब कौन है? हमारी कहानी है, ध्यान से सुनना। हाँ, हमारी कहानी है कि वो ब्राह्मण था, शास्त्रज्ञ था, अर्थात ज्ञान को खूब अर्जित किया हुआ था। और बताते हैं मतलब कहानी के अनुसार, जो ज्ञान 20 वर्ष की उम्र में व्यक्ति अर्जित करता है, वो ज्ञान उसने 10 वर्ष की आयु में अर्जित किया था, जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि ज्ञान में कितना तीखा होगा, ज्ञान में कितना निपुण रहा होगा वो। तो ब्रह्म शास्त्रज्ञ था, ब्रह्मचारी था, सदाचारी था, गुणों का तो जैसे खजाना था, सत्यनिष्ठ था और गुरुओं की, अतिथियों की, बड़ों की खूब सेवा करता था, बहुत आतिथ्य करता था, बहुत विनम्र रहता था और साथ साथ प्राणी मात्र के लिए भी उसके दिल में दया थी। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत से सदैव अपने को सेफ रखता था, परोपकारी था, सबका हितैषी था, मितभाषी था। यही कहा गया ना आपको भी, भट्टी के लिए कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, जितना आवश्यक है उतना ही। दीदी के लिए भी यही कहा ना हमने कल कि बहुत ही मितभाषी है, बहुत कम शब्दों में कार्य चला लेते हैं, बहुत कम शब्दों में ज्ञान को स्पष्ट कर देते हैं। तो इतने सर्व गुणों से वो भरपूर था, इतनी विशेषताएं थी उसकी। और ये सारी विशेषताएं बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। क्या है हमारे ज्ञान ईश्वरीय पढ़ाई के चार विषय? ज्ञानी था वो, हाँ, भगवान को भी खूब याद करता था, योगी था, गुण थे और सेवा करता था। धारणा माना सेवा, सेवा करता था। छोटों से कैसे चलना होता है, बड़ों से कैसे चलना होता है, हम जिनसों से कैसे चलना होता है, ये सब उसके जीवन में था। अर्थात उसके जीवन में वो सब था जो आज बाप दादा हम ब्राह्मणों में अपेक्षा रखते हैं, अर्थात हमारी कहानी है। समझ में आ रही बात? लेकिन बाप दादा, या कहे बाबा, हमें मुरलियों के द्वारा बार बार अन्न दोष से, संग दोष से, सिनेमा सिन की मां से बचने के लिए सावधानी देते रहते हैं। देते रहते या नहीं देते रहते हैं? क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि ये मेरे बच्चे 63 जन्म माया के संग में थे। किसके संग में थे? माया के संग में थे। मेरे बच्चे माया को भी बहुत प्रिय लगते हैं, बाबा बोलता है ना। लेकिन अब जब माया के संग में रह रहे के बच्चे खूब परेशान हो गए हैं, खूब गुहार लगाई मेरे पास, अब तो आ जाओ प्रभु, और अब मैं आ गया हूँ। तो अब मेरे संग में आ गए हैं, ईश्वरीय संग में आ गए हैं। परंतु 63 जन्म जो माया के संग रहे हैं, उसके बीज तो आत्मा में पड़े हैं, और ये बीज उचित समय, उचित पानी, उचित धूप हवा मिलने पर पुष्पित पल्लवित होने में देरी नहीं करेंगे। और इसलिए बाबा हमें बार बार सावधानी देते रहते हैं। कल भी हमने राज दीदी को सुना, लास्ट लास्ट में जब हम आए तो दीदी कह रहे थे, बाहर की दुनिया से तो हम वैसे ही अभी आकर्षित नहीं करती है, अभी ब्राह्मण परिवार के अंदर ही संग से बचना होता है, कह रहे थे ना कल दीदी। तो हम तो कहेंगे सिर्फ ब्राह्मण परिवार के अंदर ही नहीं, मोबाइल के संग से भी बचना है। मोबाइल सबके हाथ में है, उसमें माया वाली पूरी दुनिया भरी पड़ी है। अगर ईश्वर वाली दुनिया है उसके अंदर, मतलब हम कहें कि हम क्लासेस देखते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हाँ हमारे अलग अलग ग्रुप्स है जिसमें हम मुरली रिवीजन करते हैं, या क्लासेस एक्सपीरियंस शेयरिंग के होते हैं, उसके लिए हम मोबाइल यूज करते हैं। परंतु वहां पे भी संभलना, इधर का उधर बटन दब गया, माया वाली दुनिया भी सामने आ जाएगी, और अंदर पड़े बीज को थोड़ा भी पानी मिला, क्योंकि अकेले में देख रहे हैं ना, एक क्षण उत्सुकता हुई, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या है, अनुभव ऐसा सभी को होता है, नहीं होता, जो नहीं देखने योग्य भी होता है, कई बार कर लेते नहीं कर लेते हैं, बाबा को पता है ये सब, और इसीलिए बाबा वार्निंग देते हैं खूब। तो इसके साथ ही यही हुआ, उसे कहा गया यज्ञ के लिए, पूजा के लिए जाके फल फूल समिधा की सामग्री लेकर आओ, और गया और कहा गया कि बहुत भीतर जंगल में नहीं प्रवेश करना। लेकिन जिस चीज के लिए मनाई की जाती है, और कोई बड़ा तो था नहीं, बालक ही तो था ना, कहा ना 20 वर्ष में जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करे 10 वर्ष में कर लिया, ब्रह्मचारी था अभी, अनमैरिड था वो, तो क्या उम्र होगी, कम ही उम्र का होगा। गया जिस बात के लिए मना करो, मन उसी तरफ भागता है, चला गया थोड़ा अंदर की तरफ, तो देखता है एक सीन। क्या सीन देखता है? एक शूद्र और एक शूद्राणी, माना एक स्त्री और एक पुरुष निम्न कुल के, है वो ब्राह्मण, लेकिन सीन कौन सा देख रहा है? शूद्र और शूद्राणी का। और वो क्या कर रहे हैं? सेक्स लस्ट में डूबे हुए हैं, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, हाँ मदमस्त है उसमें। उस शूद्राणी को पता ही नहीं चल रहा मेरे अंग के वस्त्र कैसे हट गए, उसको होश नहीं है, और इसने छिप कर देखा, ब्राह्मण था ना, पकड़ा जाएगा तो खबर चली जाएगी पूरे ब्राह्मण परिवार में, अपने को ब्राह्मण कहता है और मैंने उसको देखा है, हाँ ब्राह्मण परिवार में भी पीछे लगे रहते नहीं लगे रहते हैं। तो छुप के देखा, और छुप के देखा फिर तो चला गया, लेकिन एक बार सीन अंदर जाता है, चिंतन चलता है, और उसका चिंतन आरंभ हुआ। लेकिन जैसे कहा कि वो ज्ञानी था, और उस ज्ञान के आधार से अपने आप पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, ये मैं ब्राह्मण में कर क्या रहा हूं, क्यों मेरे अंदर ऐसे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन कहते ना विकार, विकार माना एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा आवेग, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा धक्का कि वो आपसे वो कुछ करवा लेगा जो आप नहीं भी चाहते हो। इसीलिए ऐसे ही तो होता है, व्यक्ति कहता है ना किसी को, कहो आप गुस्से में, पता है आपने क्या क्या बोला था, मैं क्या करूं, मैं उस समय अपने आप ही से बाहर चला गया था। वो वेग ऐसा आता है, हम रोक नहीं पाते अपने आप को, और जब वो वेग शांत होता है और कोई उसको कहे आपने ये बोला, उसको खुद को आत्मग्लानी होती है, मैंने अपनी इतनी अच्छी रिपोर्ट पर इतना गंदा दाग लगा दिया, शर्म आती है उसे खुद को, और सोचता है कि ये बात ज्यादा फैले नहीं। अनुभवी होंगे सभी, विकार माना ही वेग जो आपको आउट ऑफ कंट्रोल कर दे। कितना ही ज्ञान क्यों नहीं हो, लेकिन वो उस पर भी क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। आसक्ति किसको कहते हैं, आसक्ति, आसक्ति किसको कहते हैं, हाँ, इंद्रियां विषयों को देखती है, आंख दृश्य को देखेगा, आंख देखेगी, कान ध्वनि सुनेगा अर्थात बातचीत सुनेगा, आंख इस प्रकार के कोई दृश्य देख लेगा, वैरायटी हो सकते हैं। हर इंद्रिय का जो काम है वो सब डेटा लेके आ रहे हैं, मन तक पहुंच रहा है वो सब, और मन पर, मन के पास पहुंचने के बाद उसी का बार बार चिंतन जब होता है तो फिर मन कहता है अब मुझे चाहिए तो यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जैसे कई मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे किसी ने बता दिया ये वाला ब्रांड इतनी प्राइस वाला ये बहुत अच्छा मोबाइल है, और मैंने खूब खूब उसका चिंतन किया, अब दूसरा मुझे राय दे रहा है दूसरे लेने के लिए, मुझे चाहिए तो यही वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना सारा अंदर में चिंतन हो चुका है कि अब मन कहता है चाहिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, मुझे दूसरा वाला मोबाइल चाहिए ही नहीं, आप लेके आओ अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये बोला मुझे यही वाला चाहिए, क्योंकि मन ने इतना सारा उसके प्रति चिंतन कर लिया है। तो इसका भी चिंतन चला है, ज्ञान को यूज कर रहा है, परंतु पिछले जन्मों का बीज कुछ ऐसा पावरफुल रहा होगा कि इसका ज्ञान वहां पर काम नहीं किया और आखिर फिसल गया, और फिसला तो फिसला कि आखिर वो कार्य करना आरंभ किया। अभी ब्रह्मचारी है, पिता को कह दिया लोगों ने आपका बच्चा ऐसी ऐसी बुरी संगत में है, बेटर है उसकी शादी करा दो किसी सद्गुणी सुशील कन्या के साथ, कम से कम एक के साथ रहेगा, दुनिया के हिसाब से तो एक के साथ तो लाइसेंस है शादी करने के बाद, है ना, तो कम से कम एक के साथ रहेगा। पिता ने करवा दी थी शादी, लेकिन सुशील कन्या और वैश्या में तो बहुत अंतर होता है, वैश्या जिस तरीके से रिझाएगी एक सुशील कन्या वैसा थोड़ी करेगी, इसीलिए तो बोलते हैं ना घरवाली और लवर में बहुत अंतर होता है, दुनिया में लोग कहते हैं, क्योंकि घरवाली तो समाज के अनुसार रहेगी, उसको घर गृहस्थी की जिम्मेवारी संभालना है, लेकिन लवर को तो सिर्फ लविंग एक्टिविटीज करना है, मेरे पर पैसा लुटाते चलो और मैं लविंग एक्टिविटीज कर करके दिखाऊंगी और तुम उसमें खुश हो जाओगे, पर उससे घर बसते हैं क्या, कभी उससे घर नहीं बसते हैं, इसीलिए तो उसको घर में स्थान नहीं होता है, उसको घर के बाहर घूम के करता है वो, क्योंकि उसको घर बसाने नहीं आता, उसको तो सिर्फ घर उजाड़ने आता है। तो दोनों में अंतर होता है। तो फल पिता ने उसकी शादी भी कर दी, परंतु चूंकि वो ऐसी एक्टिविटी थोड़ी करेगी जैसे वो कर रही थी, तो उसको तो भाई नहीं, उसको तो वही याद आए। आखिरकार उसने उसी वेश्या को अपने घर लेकर आया, माता पिता को खूब परेशान किया, अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी का त्याग किया, क्योंकि वेश्या है, उसके ऊपर जब तक लुटाएगा नहीं वो खुश थोड़ी होने वाली है, वो व्यापार है ना उसका। तो खूब धन भी लुटाया, आखिर धन भी कितना तक चलेगा, धन भी आखिर खुटा, और खूब सेक्स लस्ट में 10 बच्चे भी पैदा किए। तो उसको संतुष्ट करना, फिर बच्चों को पालना, क्या नहीं चाहिए होता है, लाए तो कहां से लाए। तो फिर चोरियां करना शुरू किया, डकैतियां करना शुरू किया, लूट मार करना शुरू किया, खूब खूब सब कुछ किया। और ऐसे करते करते बच्चे भी खूब पैदा करते गया, 10-10 9-9 बच्चे पैदा हो गए। जब 10वां बच्चा गर्भ में था तो कहते हैं इनके घर में संतों का आगमन हुआ, क्योंकि वो संत थे, वो साधु थे कि हमें विश्राम करना है, प्रसाद खाना है, भोजन खाना है, तो ब्राह्मणों का ही घर चाहिए। इसलिए गांव वालों से पूछा कि इस गांव में ब्राह्मण का घर कौन सा है। समझ में आ रही कहानी? हम लोग यही ढूंढते तो ब्राह्मण के घर का खाएंगे। तो जो संत आए थे ना वो कोई और नहीं थे, हमारी ब्रह्मचारिणी बहने आती है घर घर में। देखो बाबा कितनी हमारे पर कृपा करता है, एक तो आता है, फिर बहनों के द्वारा निमित्त बना के प्रोग्राम करवाता है। बाबा तो कहते मैं नहीं जाऊंगा बाहर, बच्चों को भेजता है, फिर प्रोग्राम में बहुतों को अच्छा भी लगता है पर वो एक दिन के ही रह जाते हैं, फिर उनके लिए अलग से शिविर का आयोजन करते हैं, फिर उसके लिए बोलते हैं कि अभी एडवांस मुरली कोर्स करो, एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं, और इतना कुछ करते हुए उनको बार बार भोग खिला खिला कर बाबा का बनाने की बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद भी क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार बीज जो पड़े हैं, कई तो चल पड़ते लेकिन कई कोई ना कोई बात को लेकर रूठा रूठी, या कोई फिल्म देख ली, या बहक गए, और फिर बाबा उनको भी नहीं छोड़ता, बच्चों को कहता है जाओ पीठ करो, तो ये पीठ करने वाले संत थे। समझ में आया कि जाना है तो किसके घर जाना है? ब्राह्मणों के घर जाना है। तो ब्राह्मणों के बोल के तो शहर वाले गांव वालों ने क्या किया, मजाक सूझी, बोले हाँ है एक ब्राह्मण जो गांव से बाहर रहता है, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति होगा तो कौन उसको गांव के अंदर स्थान देगा ना। अब वो आए उनके घर गए, अजामिल तो था नहीं, तो इसने संतों ने कहा देवी हमें कुछ यहां विश्राम भी करना है और भोजन भी खाना है। तो देवी जी ने कह दिया मानो उसकी पत्नी ने कि स्वामी जी तो घर पे नहीं है और इसलिए मैं आपको सामग्री देती हूं, आप स्वयं रसोई तैयार करके खा लीजिए। उन्होंने वैसा किया। शाम होते होते अभी इनका रवानगी का समय, और तब तक आके अजामिल भी पहुंच गया, और अजामिल भी जब पहुंच गया तो कहा कि दक्षिणा, दक्षिणा होती है ना, क्योंकि भोजन करना माना क्या होता है, जैसे होता है ना यज्ञ जब संपन्न करते हैं तो यज्ञ के बाद दक्षिणा होती है, नहीं तो यज्ञ का फल नहीं मिलता ऐसा कहते हैं। और यज्ञ माना क्या, कि यज्ञ माना अग्नि कुंड होता है, उसमें आहुति डाली जाती है, वही यज्ञ होता है ना। तो उन्होंने भोजन खाया, इधर भी क्या है, अग्नि है ना, वहां पे वो अग्नि कुंड होता है, यहाँ पे जठराग्नि कुंड है, उसमें भोजन गया माना आहुति गई माना यज्ञ हुआ। अब दक्षिणा आपने जो ये खिलाया, ये जो यज्ञ करवाया, ये सफल तब होगा जब दक्षिणा मिलेगी, तो तब तक तो अजामिल आ भी गया और उसने कहा भाई अभी हम चल रहे हैं जाते जाते दक्षिणा। अजामिल ने कहा शुक्र करो जो मैं नहीं था तो मेरी पत्नी ने तुमको सामग्री दी। अजामिल को देने नहीं आता है, लेने आता है सिर्फ। कहा ना डकैतियां करता था, चोरी करता था, लेकिन उनको पता है संतों को साधुओं को कि यज्ञ की सफलता नहीं होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है दक्षिणा नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक वचन दे दो। क्या वचन भाई बोलो? तो कहा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बच्चा जब होवे तो उसका नाम क्या रख देना? नारायण रख देना। अब इसको तो ये तो सब कुछ भूल चुका था, वैश्या के चक्कर में पड़ के वो जो भी उसके जीवन में था वो धर्म कर्म सब कुछ भूला हुआ था, वो सब कुछ। तो नारायण भी भूला हुआ था, तो पत्नी को कहता है, पत्नी समझाती है उसको कि अजी हाँ कर दो ना, इस वचन निभाने में कौन सी आफत है, कौन सी दिक्कत है, नाम ही तो रखना, कोई ना कोई तो नाम रखना ही पड़ेगा, नारायण ही सी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पत्नी के कहने पर वचन दे दिया और फिर कालांतर में बच्चा हुआ, नाम रखा नारायण। उम्र हो चली 80 के ऊपर और फिर लास्ट वाला बच्चा तो कितना नहीं आकर्षित करेगा, तो हर बात पे उसको ही याद करता, बेटा नारायण इधर रहा, बेटा नारायण ग्लास भर के लाए पानी का, बेटा नारायण बिस्तर ठीक कर दे, बेटा नारायण पांव दबा दे, हर बात में नारायण 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 नारायण। मोह हो जाता है ना, और कालांतर में कहते हैं उसके अंतिम समय भी आया, सोया हुआ है बेड पर और वो जो कहा, जो पहले हम कहकर आए कि लोग जब मरते हैं मरने से पहले सीन आता है, ये कुदरत की बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक व्यवस्था क्या है कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, मतलब आत्मा जब शरीर छोड़ती है और दूसरी देह धारण करती है, तब तक पिछली वाली स्मृतियों का फोल्डर पे वो लॉक लगा देती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देती है कि अब इस जन्म में पिछले जन्म के फोल्डर नहीं खुलेंगे, पासवर्ड याद ही नहीं आएगा तो खोलेंगे कहां से। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर पड़ा रहेगा और वो आपकी जिंदगी को प्रभावित भी करता रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देगा आपको। और इसीलिए हम कहते पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था। क्यों बोल रही है? क्योंकि फोल्डर में पड़ा है, वो प्रभावित कर रहा है पर प्रत्यक्ष नहीं आ रहा है। तो दूसरी व्यवस्था ये की है कुदरत ने बहुत अच्छी कि जब आत्मा शरीर, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना अंतमति सोगति, ये भी एक व्यवस्था है कि जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है, मतलब आत्मा को इसमें से निकलना होता है, तो जीवन की रेल सामने घूम जाती है। और अगर वो जीवन की रेल, क्योंकि जीवन की जो रेल घूमती है, तो कहा ना काले काले यमदूत आए हैं मारने के लिए आए हैं, छोटे छोटे पाप भी ऐसे लगते हैं जैसे कोई बड़ा पाप किया हुआ है, ऐसे लगेगा जलन हो रही है, कोई चमड़ी को खींच रहा है, ऐसी त्राही त्राही होती है उस समय। तो वो काले काले यमदूत, बाबा ने कहा बाबा की परिभाषा में, बाबा कहते हैं वो काले काले यमदूत कोई और नहीं होते हैं, आपके किए हुए पाप होते हैं। तो कहानी में आता है कि उसको काले काले यमदूत और वो भी तीन, हाँ गिरफ्तारी का वारंट साथ में लेकर आए हैं। बाबा कहते हैं ना जब मैं सजा देता हूं, क्योंकि न्यायालय में भी जज क्या करता है, ऐसे ही थोड़ी मुजरिम को डायरेक्ट सजा देता है, पहले सुनाता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये धारा के अनुसार मुजरिम को ये सजा। तो वहां पर भी जिसको काले काले यमदूत यमराज ने भेजा है, यमराज ने भेजा है, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसका टाइम पूरा हो गया है और चूंकि इतने पाप किया है तो उसको गिरफ्तार करके लेके आओ। गिरफ्तारी के लिए कड़ी होती है, जंजीर होती है, तो फंदा लेकर आए हैं और उसको जबरदस्ती फंदा डाल रहे हैं। घबरा गया क्योंकि यमदूत काले 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 बाल, वो भी कैसे बिल्कुल कड़े कड़े, अफ्रीके लोगों के देखे काले बाल कैसे होते हैं, सिंग लगे हैं, लाल लाल आंखें, चमड़ी बिल्कुल खरदूरी सी, ब्लैक ब्लैक, नुकीले नाखून, वो भयावह रूप देखकर ही वो तो भयभीत हो गया और ऊपर से फंदा जबरदस्ती। और उस डरावनी सीन को देखकर उसकी रूह कांप गई और उस रूह कांपने में बेहोश हो गया। जब हमको बहुत चोट लगती है तो क्या हो जाता है, सहन से ऊपर जब कोई चोट लगती है ना, बेहोश हो जाता है व्यक्ति। वो बेहोशी में आ गया, कोमा में चला गया, लोगों ने सोचा मर गया है। और इसलिए कहानियों में आता है कि वो और क्योंकि डर गया तो उस समय क्या चिल्लाया, नारायण, क्योंकि अनारायण नारायण तो बुलाता था हर बार, तो उस समय भी नारायण ही याद आया, कौन बेटा, हे बेटा नारायण, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसमें वो बेहोश, अंदर चल रही है बातें, बाहर की दुनिया से सूक्ष्म में जैसे हम रात्रि को सोए पड़े रहते बेहोशी में, लेकिन अंदर की दुनिया तो चलती रहती है ना, तो अंदर की दुनिया उसकी चल रही है, रूह कांप गई है उसकी। और नारायण शब्द जो कहा ना, कि संतों ने कहा कि नारायण नाम रख लेना, उसके पीछे का राज क्या था। हमारी बहनें भी या भाई बहनें जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो बाबा ने कहा है पीठ करो जाके, क्या करते हैं, जाके ज्ञान को फिर से समझाते, नहीं समझाते तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ अच्छा इतना तो कर सकते हो कि जब भी भोजन बनाओ बाबा के गीत लगा के रखो, ये शिव बाबा का स्लोगन लगा के रखो, ये चित्र लगा के रखो, कोई ना कोई बहाना। जैसे एक वो सीन देखा, उस सीन ने उसके पड़े बीज में को पानी दे दिया, उभर कर आया। ऐसे ही ज्ञान में भी खूब समय चला है ना और फिर जाके छोड़ा है, तो पता है वो वाला बीज भी तो पड़ा है, तो कहीं ना कहीं उस बीज को भी पानी मिलेगा तो वो भी तो फिर से पल्लवित और पुष्पित होगा। और वही उसके पीछे राज है कि क्यों कहा गया कि तुम क्या करना, बेटे का नाम नारायण रखना। तो नारायण नाम रखा है जब, तो फाइलें तो हर प्रकार की अंदर, आप कंप्यूटर में क्लिक करने जाओ अगर आपका हिल गया हाथ तो फाइल खोलने गए थे एक खुल गई दूसरी, और दूसरा एसोसिएटेड मेमोरीज। अगर मैं कहूं जैसे किरण दीदी, अच्छा किरण दीदी, हाँ मेरी भाभी का नाम भी किरण है, तो किरण सुनकर किरण से संबंधित जो यह स्मृतियां भरी पड़ी है वो भी क्या हो जाती है, तरोताजा हो जाती है। तो जब रूह उसकी कांपी है उस भयावने दृश्य को देखकर, उस कंपायमान स्थिति में नारायण को लेकर दूसरी फाइलें भी है ज्ञान वाली, वो खुल गई उसकी, और वो खुल गई तो कहते तुरंत उस काले काले यमदूतों से जो वो डरा था, तुरंत वो देखता है विष्णु दूत सामने खड़े हैं। कौन खड़े हैं, विष्णु दूत खड़े हैं, और विष्णु दूत और यमदूत का संवाद चल रहा है, और ये ऑब्जर्वर बनके वो संवाद सुन रहा है। अभी तक तो डर गया था जिसने उसको बेहोशी में डाल दिया, लेकिन अब चूंकि उस कंपायमान स्थिति में उसकी दूसरी फाइल ज्ञान वाली खुल चुकी है, तो विष्णु दूत उसमें दिखाया कि विष्णु दूत आए और दिखाए हैं चार विष्णु दूत आए हैं, और विष्णु दूत माना विष्णु चार भुजाधारी, उसके दूत भी चार भुजाधारी के रूप में दिखाए उसमें कि वो आए हैं और दोनों का संवाद चल रहा है, और ये जैसे पिक्चर चल रही है हम देख रहे हो, जैसे मैं कह रही हूं और आप सुन रहे हो, वो ऑब्जर्वर बन के देख रहा है, इन सुन रहा है इन दोनों का। विष्णु दूत आते ही उनको कहते हैं, खबरदार जो इसको फंदा लगाया तुमने, कौन हो तुम? वो कहते हम यमदूत है, हमें यमराज ने भेजा है, इसने इतना इतना सारा पाप कर्म किया है, उसकी सजा के स्वरूप यमराज ने हमें कहा इनको लेकर आओ, नर्क में जाना, इसको लेके जाना है, खबरदार जो तुम इनको यहां से लेके जाओगे, निकालो ये फंदा। वो कहते तुम कौन हो? हम विष्णु दूत है। तो कहा इसको आप छुड़ाने का अधिकार किसने दिया आपको? तो छुड़ाने का अधिकार इसने किसका नाम लिया है? हमारे स्वामी का नाम लिया है, नारायण का। लेकिन आपको पता है इसने जो नाम लिया है वो आपका नहीं लिया है, वो तो उसके बेटे का नाम है नारायण उसका लिया है। बोले भल बेटे का नाम लिया है, लेकिन बेटे का नाम लेते लेते उसने सच्चे वाले नारायण को याद किया है। कहा तो फाइल चेंज हो जाती, एसोसिएटेड मेमोरीज काम करती है ना, एसोसिएटेड मेमोरीज, तो उसकी वो आ गई है और इसलिए उसको रोक दिया, आप इसको नहीं लेके जा सकते हो यहां से। और वो तो यमदूत तो कहा कि यहां से निकल जाओ, पिटाई होगी, पिटाई कहते उनकी, और मारे पिटाई के भाग निकले। और इधर विष्णु दूत इस अजामिल से कह रहे हैं अब भी अवसर है, तुम बहक गए थे और उस बहकने के रिजल्ट देखो, लेकिन जितना तुमने पाप कर्म किया है उससे कई कई अधिक गुणा आपका पुण्य संचित है। पूर्व जन्मों में भी कहा ना कि हम पिछले जन्म जरूर थोड़ी कि सारे ही पाप कर, कुछ पुण्य कुछ पाप, कुछ पुण्य कुछ पाप, और हर आत्मा का अलग अलग हिसाब किताब। तो इस आत्मा के केस में बताया कि तुम्हारा पूर्व जन्मों का भी बहुत बड़ा पुण्य का संचय है, और इस जन्म में भी तुम ब्राह्मण के नाते बहुत सदाचारी थे। ये तो एकमात्र सीन क्या देखा, और उस कारण से आपका पाप कर्म में लिप्त हुए, लेकिन आपका पुण्य का हिस्सा अभी भी बहुत बड़ा है, आपके पास अवसर है। और ऐसा बोलकर वो भी चले गए। और इसने तब कहते इसकी चेत, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद कोमा से बाहर नहीं निकलेगा क्या वो? हाँ, जैसे बच्चे को माँ खूब डराया, बहुत डराया, चुपचाप गुमसुम बैठ जाता है, लेकिन माँ जब देखती है इस बच्चे पर मेरी डांट का इतना असर पड़ा है, पास में ही नहीं आ रहा है, अभी एक शब्द नहीं बोल रहा है, फिर माँ क्या करती है, थोड़ा थोड़ा प्यार दे दे के, बेटा मैं कुछ नहीं करूंगी, आजा आजा आजा, करती नहीं करती है। इसका भी वही हाल हुआ, कोमा से बाहर आया, हल्का हो गया ना कि मेरे पास अभी भी एक चांस है, और एक चांस है सुनकर फिर उसने पूरा पश्चाताप किया है, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने अपने माता पिता को, जन्मदाता को खूब परेशान किया, मैंने अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी का त्याग किया, मैंने अपने ब्रह्मचर्य का खंडन किया, मैंने मांस मदिरा का सेवन किया, मैंने नॉन वेज खाया, जो सब कुछ वर्जित था ब्राह्मण जीवन में, जो जो वर्जित था वो सब मैंने किया है, सिर्फ एकमात्र सीन देखकर। मेरी पहले की जीवन क्या थी, और इतना मात्र करने से मेरे जीवन में कितनी बड़ी सजा सामने आई, लेकिन फिर भी भगवान की मेरे ऊपर कृपा कि भगवान ने मुझे एक अवसर दिया है और वहां से उसको वैराग्य जागा। किसके लिए? जो ये सारा पाप कर्म के नाम पर अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया था और ब्राह्मणत्व के जो जितने भी कर्तव्य नियम मर्यादाएं को भुलाकर बैठा था, कि जिस वैश्या को घर लेकर आया था, जो बच्चे पैदा किए थे, सबसे उपराम हो गया। उम्र तो हो चुकी थी ना, उम्र तो हो चुकी थी, उपराम हो गया। और कहते हैं फिर हरि के द्वार, हरिद्वार गया। कहानी के अलग अलग वर्षन्स आते हैं, मैंने कहा बस उन्हें तो सार देना है ना, अंदर की सूक्ष्म बातें हैं। तो धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं, अंतःकरण ही धर्मराजपुरी है। और अंतःकरण माना ही मन बुद्धि संस्कार जो अंदर है, वहीं पर तो ये हम सब कर रहे होते, वहीं पर भुगत रहे होते। सिर्फ मृत्युशैया पे नहीं, चलते फिरते जीवन में भी हमने कितनी बार देखा होगा किसी का कोई व्यवहार लेके, हाँ, हम कुछ भी कार्य कर रहे बार बार वो चल रहा है और कई दिनों तक चलते चलते फिर कहते हैं बस मैं तो अब इसके साथ नहीं रह सकता, इसके साथ मेरी जीवन रह के पूरी जीवन हराम हो गई है, मेरी रातों की चैन चली गई है, न ठीक से खा पाता हूँ, न कुछ कर पाता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। कहते नहीं कहते, चल तो कहाँ कर रही है सब अनुभव, अंदर अंतकरण में तो अनुभव कर रहे, तो अंतकरण भी। और शास्त्रों में बाबा इसको धर्मराजपुरी कहते हैं और इसी अजामिल की कहानी जहां हमने पढ़ी उसमें शास्त्रों में इसको कहते हैं संयमनीपुरी। कौन सी पुरी कहते हैं? संयमनीपुरी, अर्थात ये वो पुरी है, ये वो स्थान है, क्योंकि बाबा भी कहते धर्मराज के पास पूरा हिसाब किताब है, अर्थात अंतःकरण में, चित्त में ये सब जाके सेव होता है ना। अच्छे पुण्य कर्म भी हमारे चित्त में बैठे हुए हैं और बुरे कर्म भी बैठे हुए, कहते हैं ना चित्रगुप्त। हम छोटे थे तो कहानियां सुनते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना नहीं तो पता है क्या होगा, यहां ना चित्रगुप्त बैठे रहते हैं और चुपचाप से हर कर्म को लेखाबद्ध करते, लेखनीबद्ध करते। फिर जब भगवान के घर जाते हैं ना, वो हमारा रजिस्टर उसके सामने खोल के रख देते हैं और उस अनुसार हमको भगवान क्या करता है, गलत कार्यों के लिए सजा। सुनी होगी बचपन में सारी कहानियां, चित्रगुप्त अर्थात क्या, गुप्त रीति से हमारे हर कर्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे वो कर्म मैंने मन से किया, वचन से किया, इंद्रियों से, जिसको ही बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो जो मनसा वाचा कर्मणा हमने जो जो पाप कर्म किए तो उसको ही दिखाया, तीन तीन यमदूत आए थे, अर्थात मनसा से, वाचा से, कर्मणा से हमने जो जो पाप कर्म किए। और उधर कहा कि चार चार विष्णु दूत, चार चार भुजा वाले, चार चार विष्णु दो, चार चार भुजा वाले का क्या अर्थ है? क्या दिया है बाबा ने लक्ष्य हमको? ज्ञान योग सेवा धारणा के द्वारा क्या बनना है? नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है, विष्णु बनने का लक्ष्य दिया है ना हमें। क्या है उसके चारों हाथों में? शंख चक्र गदा पद्म। तो वो सारा ज्ञान उसको याद आ रहा है, विष्णु दूतों की उस रूप में उपस्थिति का मतलब सारा ज्ञान उसको याद आ रहा है। वो वाली फाइल उसकी खुल गई है कि मैं कहां शंख बचाने वाला ईश्वरीय ज्ञान का और गदा से माया को डंडा मार के भगाने वाला, कमल पुष्प समान जीवन जीने वाला, सुदर्शन चक्र चलाकर प्रदर्शन परचिंतन परमस से दूर रहते हुए माया का गला घोटने वाला, मैं कहां फंस गया? खूब पश्चाताप किया है। तो जैसे कहा नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है मर गया लेकिन फिर जीवित हो जाता है और आकर सुनाता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और सारा सुना के घर से छुट्टी ले लिया और हरिद्वार में जाकर तो बता रहे थे कहानियों के अलग अलग वर्षन आते तो किसी में बताते 6 महीना, किसी में बताते 1 साल, किसी में बताते 11 साल। पर कहने का मतलब कि उसके बाद उसने फिर भगवान को याद किया है। किस लिए? कि जितने भी अभी तक मेरे विकर्मों के बीज पड़े हैं उनको जलाकर भस्म करूं, विकर्मा जीत बनूं। और तब बताते जब वो विकर्मा जीत बना है भगवान को हरि को याद करके, तो वही विष्णु दूत अभी विमान लेकर आए हैं, चलिए वैकुंठ। हमारा ही ज्ञान है कि नहीं है, कि अलग है? पूरा है हमारा ज्ञान। तो ये भट्टियां क्या है? ये भट्टियों का आयोजन किस लिए है? क्यों हमने कहा आपका अपना एकांत का समय है? क्यों आपको कहा कि मौन को धारण करना? कोई जिम्मेवारी नहीं है, एक ही जिम्मेवारी, स्व उन्नति। ऐसी उन्नति कि जिस दिन हम आए थे भट्टी करने उस समय जो हमारी स्थिति थी और अंतिम दिन जब भट्टी पूरी करके हम जाएंगे, इसमें रात दिन का फर्क होना चाहिए। मुझे वो सब चीजों को हम मानते हैं 3 दिन में नहीं होता है, बट रियलाइजेशन पश्चाताप तो हो सकता है। पश्चाताप की अग्नि में वो हमारे गलत किए हुए, बाबा कहते ना आधा माफ करूंगा। आधा माफ का क्या अर्थ है? आधा माफ का यही अर्थ है कि जो जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जो बाबा के श्रीमत के विपरीत है वो अब मेरे को भारी किए हुए है, लेकिन बाबा के सामने सत्य रख कर पश्चाताप करना, अर्थात अब कहना बाबा गलती हो गई सो हो गई, अब दोबारा इस गलती को जीवन में स्थान नहीं देंगे। इस पश्चाताप की अग्नि में जब उसके प्यार में उसको खूब सत्यता के साथ सब कुछ उसके सामने रखते जाते हैं और उस पर पूरा यकीन करके अपने आप को समर्पण करते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। और हल्का होने के बाद उसके साथ कनेक्ट होना आसान हो जाता है, और जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी पावर, क्योंकि बिना कनेक्शन तो उसकी पावर आएगी नहीं, तो जब कनेक्शन प्रॉपर हो जाता है तो उसकी पावर मेरे पास इतनी आती कि वो योग योग अग्नि का रूप ले लेता और मेरे अंदर जो बीज पड़े हैं जिनके कारण मेरे से ऐसी ऐसी गलतियां न चाहते हुए भी हो जाती है। पता तो है काम क्रोध लोभ इनसे मुझे बचना है, लेकिन आ जाता है कुछ न कुछ, तो वो बीज पड़े हैं तभी तो आ रहा है, नहीं तो कैसे होता? धरती पे किसी चीज का बीज हो ही नहीं तो उसका अंकुर फूटेगा कैसे? लेकिन अंकुर फूट रहा है ये बहुत बड़ी निशानी है कि अंदर कहीं ना कहीं बीज पड़े हैं। और वो ही कहा कि भगवान के आगे समर्पण करके कि अब इस ये काम दोबारा, ये है वैराग्य, वैराग्य जागना ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं जब तक बेहद का वैराग्य, बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं जागेगी तब तक हम संपूर्णता के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि जब वैराग्य की वृत्ति जागेगी तो अब वहां से मन हटके ईश्वर में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता है। तो लोगों ने तो सोचा वो मर गया, तो कई लोग इसलिए सुनाते रहते हैं कि बस नाम लिया इसलिए बेटे का नाम रख दो नारायण, तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा होता तो यमलोक खाली पड़ा रहता। नहीं, पर उसके पीछे ये सब है। तो ये भट्टी उसी के लिए होती है। हम कई बार हल्के में ले लेते हैं, लेकिन नहीं, जीवन में मौन को स्थान दीजिए। उस मौन में अंदर क्या है वो निकल कर आएगा। निकल कर आएगा मतलब दिखने लगेगा, जैसे जल, जलाशय का जल हिल रहा है तो उसका तल दिखाई नहीं दे सकता है, नहीं दिखाई देगा ना। लेकिन अगर पानी शांत हो गया, तलवा दिखना आरंभ होता है। तो जब शांत हो जाते हैं हम, तो अंदर क्या क्या है वो दिखने लगता है। और इसीलिए आपको कहा मौन का अभ्यास बढ़ाओ। तो ठीक है, भट्टी में तो जितना कर सके करें, लेकिन ये भट्टी अपने आप में एक नया स्टार्टिंग है कि यहां जो जो डायरेक्शंस दिए गए वो सिर्फ इस 3-4 दिन की भट्टी के लिए नहीं, लेकिन अब आगे के जीवन के लिए भी है, ताकि हम विकर्माचीत बन सके, ऐसा योग करें, ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित हो, विकर्म सारे भस्म हो जाएं, तो वो वाला विषय फिर शाम को उसकी क्लैरिटी मिलेगी आपको। शाम का टॉपिक क्या है? योग अग्नि द्वारा विकर्माचीत बनने की विधि। तो फिर दोनों मिला के पूरा हो जाएगा कि अजा मिलने, वैराग्य आने के बाद किस प्रकार का हरि का स्मरण किया, उस शाम की क्लास आपको स्पष्ट करेगी। और उसके बाद विष्णु दूत आए लेकर चले, तो बाबा कहते अंतमति सो गति। तो बाबा हमेशा पूछते हैं, साथी बन के चलना है, बराती बन के चलना है, या घराती बन के चलना है? हाँ, अगर साथी बन के, साजन के साथ सजनी बन के जाना है तो जोड़ी मैच होनी चाहिए। हाँ, वो तो संपूर्ण पवित्र, और हम, और इसीलिए जहां तक धर्मराजपुरी की बात आई तो बाबा ने कहा ना, ऐसे अपने आप को विकर्मों से मुक्त करो कि धर्मराजपुरी से जब आप क्रॉस करोगे तो धर्मराज भी आपको सैल्यूट करे। धर्मराज भी क्या करे? सैल्यूट करे, झुके आपके आगे। वरना तो धर्मराज आपको क्या करता है, बाबा ने कहा ना, पास विद ऑनर, मतलब धर्मराज सैल्यूट करेगा। और अगर उससे थोड़ा कम है तो बाबा ने कहा आंख दिखाएगा, और उससे भी कम है तो फिर तो यमदूत बनके गिरफ्तारी का वारंट और फंदा लेकर आएगा। हाँ, तो हमें कैसे करनी है धर्मराजपुरी क्रॉस, ये हमें अपने आप से पूछना है। कैसे करनी है? धर्मराज मुझे खुद सैल्यूट करे। हाँ, वो हमें सैल्यूट करे। और इसके लिए बाबा कहते सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे आप रास्ते से जाते हो, कार चलाते हो, और अचानक पुलिसमैन ने कहा सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट नहीं है, चालान हो जाएगा। तो बाबा कहते अपने वरिष्ठों से सर्टिफिकेट लो। हमारे वरिष्ठ पहुंच गए हैं। हाँ, तो इसीलिए कहते कि हरेक अपना अपना पोता मेल। बाबा कहते बाबा को तो दो, लेकिन कई बार देखा है कि बाबा को देने के बाद ही उतना हल्के नहीं होते जितना हम किसी अपने निमित्त बड़े विश्वासु के सामने अपनी दिल की बात रखते, तब जाके हल्कापन आता है। और तब बाबा ने कहा कि धर्मराजपुरी में ये महारथियों की ज्यूरी होगी। आता है ना मुरली में, कि अगर उनका सर्टिफिकेट होगा तो बाबा भी ओके करेगा। इसीलिए बाबा कहते मैं नहीं देता हूं दंड, दंड के लिए मैंने किसको रखा है? धर्मराज को रखा है, धर्मराजपुरी, जिसको भक्ति मार्ग के शास्त्रों में क्या क्या, संयमनीपुरी, कि जहां न्याय होगा कि आपने कितने धर्म के कार्य किए, कितने अधर्म के कार्य किए, उसके अनुसार आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में, अर्थात ही धर्मराजपुरी सजा देकर आपको आगे भेजेगा या सैल्यूट करके आगे भेजेगा। तो अद्भुत मिसाल है अजामिल पश्चाताप और वैराग्य का, और ये अजामिल कोई और नहीं, हम ब्राह्मणों की कथा है। और कहते अजामिल शब्द का विश्लेषण भी इतना सुंदर किसी ने कहा, अजामिल माना अ आत्मा के लिए, एक ऐसी आत्मा जो थी तो ब्राह्मण कुल की, ब्राह्मण कुल की सर्व नियम मर्यादाएं फॉलो करती थी, श्रीमत पर चलती थी, लेकिन चलते चलते जाकर के हाथ मिला लिया माया के साथ, तो उसकी हुई ऐसी दुर्गति। लेकिन वापस कहा ना नारायण नाम रखना, हमारी बहनें कह के जाती और कुछ नहीं, किचन में गीत बजाते रहना बाबा के, बाबा का एक चित्र लगा दो, तो किसी न किसी तरीके से बाबा याद में आएगा, तो बिगड़ी हुई ट्रैक से वापस क्या हो जाएंगे, राइट ट्रैक पर आ जाएंगे। तो राइट ट्रैक पर आ जाएंगे तो विष्णु दूत हमें लेने के लिए आ जाएंगे, अर्थात अंतमति सोगति, अर्थात साजन के साथ सजनी बनकर उसके घर जाएंगे। ओम शांत।
इसमें तू ही तो बसता,
तुम बिन